नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक पुस्तक है, परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी।
जी हाँ, और इसी पुस्तक के एक विशेष अध्याय पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे।
हाँ, अध्याय का नाम है भारत में आदर्श नारी की शानदार परंपरा। तो हमारा इरादा यही है कि इस अध्याय में जो दृष्टिकोण वंदनीय माता जी ने रखा है उसे समझें।
बिल्कुल, मतलब कि उनके अनुसार भारतीय समाज में हिस्टोरिकली स्त्रियों की भूमिका, उनका महत्व क्या रहा है,
इस पर बात करेंगे।
हाँ
और इसमें वो जो स्त्रियों को देवी कहने की परंपरा है,
हाँ
उसका भी जिक्र है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ और ये दृष्टिकोण, जैसा वंदनीय माताजी बताती हैं, स्त्रियों के जो खास गुण हैं और समाज में उनकी जो एक केंद्रीय भूमिका रही है उस पर जोर देता है,
खासकर धर्म, संस्कृति, नैतिकता,
जी
इनको बनाए रखने में, है ना?
जी हाँ बिल्कुल, इन्हीं पहलुओं पर।
तो चलिए थोड़ा और खोलते हैं इसको। अध्याय का एक मुख्य विचार ये है कि स्त्रियां सद्गुणशीलता और सच्चरित्रता में, मतलब अच्छे गुणों और नेक चरित्र में, पुरुषों से आगे रही हैं।
हाँ, और वंदनीय माता जी के अनुसार इसी वजह से उन्हें देवी कहा गया।
अच्छा, तो ये सिर्फ एक सम्मानजनक शब्द नहीं था उनके हिसाब से, इसके पीछे कोई गहरा अर्थ था।
बिल्कुल, वंदनीय माता जी का यही कहना है, उनके विश्लेषण के अनुसार ये देवी का दर्जा समाज की इस सोच से निकला था कि स्त्रियों में एक स्वाभाविक नैतिक शक्ति होती है, मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है। और पुस्तक के अनुसार ये कोई ऐसा नहीं कि बस कह दिया, बल्कि समाज के संतुलन और धर्म को बनाए रखने में उनकी जो सक्रिय भूमिका थी, ये उसकी स्वीकृति थी।
अच्छा, और ये तो हुई नैतिकता की बात, इसके अलावा उनके योगदान के बारे में वंदनीय माता जी क्या कहती हैं? आपने शुरू में कहा था कि समान साझेदारी की भी बात है।
हाँ, ये एक बहुत अहम बिंदु है, वंदनीय माता जी इस पर जोर देती हैं। वो कहती हैं कि स्त्रियों का योगदान सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं था।
अच्छा
जी, उनके नजरिए से स्त्रियां समाज के निर्माण में और यहाँ तक कि भौतिक विकास में भी पुरुषों की बराबर की भागीदार थीं।
बराबर की भागीदार,
हाँ, और इसी पारस्परिक अभिन्नता, मतलब आपसी गहरे जुड़ाव और सहयोग ने देश को समृद्धि की तरफ बढ़ाया, ऐसा पुस्तक में बताया गया है।
अध्याय में ये भी कहा जाए कि स्त्रियों को पुरुषों के लिए प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत माना जाता था।
बिल्कुल, और शक्ति उपासना का प्रतीक भी, स्नेह और सौजन्य की देवी, पुरुष की निर्मात्री, ये सब बातें आती हैं।
ये निर्मात्री शब्द पर थोड़ा और रुकते हैं।
ठीक,
पुरुषों की निर्मात्री, क्या वंदनीय माता जी इस पर थोड़ा और बताती हैं कि इससे उनका आशय क्या है?
हाँ, अध्याय में इसका जिक्र है। देखिए, वंदनीय माता जी के दृष्टिकोण से निर्मात्री शब्द उस गहरे असर को दिखाता है जो स्त्रियों का पुरुषों के चरित्र पर, उनके मूल्यों पर और यहाँ तक कि उनके भविष्य को आकार देने में होता है।
मतलब माँ के रूप में शुरू से लेके।
हाँ, माँ के रूप में तो है ही, लेकिन जीवन भर एक प्रभाव रहता है, उन्हें गुणों को स्थापित करने वाली एक बुनियादी शक्ति के रूप में देखा गया है। पुस्तक में जो विचार है वो ये कि किसी भी राष्ट्र का उठना उसकी स्त्रियों की उन्नति और उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है।
अच्छा,
और इसी से वो विचार भी जुड़ता है कि शक्ति की उपासना अक्सर देवियों के रूप में क्यों होती है। अध्याय के अनुसार ये उनकी स्वाभाविक शक्ति और सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है।
ये वाकई एक सशक्त विचार है। अच्छा, अब उस कहानी पर आते हैं जो पुस्तक में दी गई है, शिवाजी महाराज वाली। वो कहानी इन विचारों को कैसे सामने रखती है जिनका जिक्र वंदनीय माता जी कर रही हैं?
आमतौर पर शायद बदले की भावना की उम्मीद होती है।
हाँ, उस समय के हिसाब से तो शायद यही होता,
लेकिन शिवाजी महाराज की प्रतिक्रिया तो बिल्कुल अलग थी, है ना?
पुस्तक बताती है कि उन्होंने उस युवती को देखा, मुस्कुराए।
बिल्कुल, बदले की भावना तो दूर, वंदनीय माता जी लिखती हैं कि उन्होंने उस युवती को पूरे सम्मान के साथ उसके घर वापस भेजने का हुक्म दिया। और सबसे खास बात जो स्रोत में बताई गई है वो उनका जाते समय कहा गया वाक्य था।
उन्होंने कहा, काश मेरी माता जीजाबाई इतनी ही सुंदर होती तो आज मैं भी ऐसा ही सुंदर होता।
ये बहुत गहरी बात है। यहाँ सुंदरता का मतलब शायद सिर्फ बाहरी रूप नहीं था।
हाँ बिल्कुल,
कह सकते हैं कि आंतरिक गुणों की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता की बात थी।
तो वंदनीय माता जी इस घटना का क्या मतलब निकालती हैं? पुस्तक में इसका क्या महत्व बताया गया है?
देखिए, वंदनीय माता जी इस प्रसंग का इस्तेमाल, जैसा पुस्तक में दिया है, नारी गरिमा के प्रति गहरे सम्मान को दिखाने के लिए करती हैं, यहाँ तक कि शत्रु पक्ष की स्त्री के प्रति भी।
अच्छा,
उनके नजरिए से ये दिखाता है कि कैसे एक मुश्किल टकराव वाले पल को भी नारी सम्मान के अवसर में बदला गया। ये उन आदर्शों को दिखाता है जिनकी वो बात कर रही हैं। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि उन सिद्धांतों के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है जिनका अध्याय समर्थन करता है, मतलब स्त्री में दिव्यता और स्वाभाविक गरिमा देखना।
तो ये तो हुई इतिहास की बात। क्या वंदनीया माता जी आज के समय के लिए भी इन आदर्शों की कोई प्रासंगिकता देखती हैं इस अध्याय में?
हाँ बिल्कुल, अध्याय का रुख फिर आज के संदर्भ की ओर मुड़ता है। वंदनीय माता जी का मानना है कि आज भी स्त्रियों की भूमिका उतनी ही जरूरी है बल्कि शायद और भी ज्यादा।
किस तरह से?
खासकर समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको मिटाने में और समाज के नव निर्माण में योगदान देने में। पुस्तक में ये सुझाव है कि जो विचारशील स्त्रियां हैं उन्हें इन क्षेत्रों में आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
मतलब ये सिर्फ अतीत का गुणगान नहीं है?
नहीं बिल्कुल नहीं, ये स्रोत में वर्णित इन ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर वर्तमान और भविष्य के लिए एक तरह का आह्वान भी है।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? वंदनिया माता जी के इस अध्याय भारत में आदर्श नारी की शानदार परंपरा से हमने उनके नजरिए को समझा, जिसमें वो देवी सम्मान की बात है जो नैतिक नेतृत्व दिखाता है।
हाँ, और राष्ट्र निर्माण में बराबर की साझेदारी का विचार भी है।
बिल्कुल, शिवाजी महाराज के प्रसंग से वो गहरा सम्मान झलकता है और आज के समय में भी स्त्रियों की सक्रिय भूमिका की जरूरत पर जोर है।
हाँ, संक्षेप में कहें तो ये अध्याय, जैसा हमने स्रोत के आधार पर चर्चा की, इतिहास का एक खास नजरिया पेश करता है जहां स्त्रियों को ऊंचा सम्मान प्राप्त था और पुरुषों के साथ आपसी सम्मान पर आधारित उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है जो सीधे वंदनिया माता जी की लेखनी से ही निकलता है कि सम्मान और साझेदारी के ये आदर्श जिनका वर्णन अध्याय में ऐतिहासिक रूप से किया गया है, आज के इस बदलते हुए सामाजिक माहौल में किस तरह देखे या समझे जा सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना?
बिल्कुल, ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए।